Cambridge Assessment, International Education, Cambridge IGCSE, March 2025 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
छात्रों, आज हम आपको लंदन की सैर पर ले चलेंगे. ये सैर हम बस, नाव और साइकिल से भी कर सकते थे, लेकिन हमने पैदल सैर को चुना क्योंकि लंदन जैसे प्राचीन शहर के इतिहास और रहस्यों को पैदल सैर के बिना नहीं समझा जा सकता. पैदल सैर कई तरह की है. शर्लॉक होम्स से जुड़े ठिकानों की सैर, हैरी पॉटर से जुड़े स्थानों की सैर और शाही पार्कों की सैर. इनमें से आप अपने पसंद की सैर चुन सकते हैं. छात्रों, आज हम आपको लंदन की सैर पर ले चलेंगे. ये सैर हम बस, नाव और साइकिल से भी कर सकते थे, लेकिन हमने पैदल सैर को चुना क्योंकि लंदन जैसे प्राचीन शहर के इतिहास और रहस्यों को पैदल सैर के बिना नहीं समझा जा सकता. पैदल सैर कई तरह की है. शर्लॉक होम्स से जुड़े ठिकानों की सैर, हैरी पॉटर से जुड़े स्थानों की सैर और शाही पार्कों की सैर. इनमें से आप अपने पसंद की सैर चुन सकते हैं.
संवाद दो.
भैया, क्या है सस्ते दाम पर आपने बोर्ड लगा रखा है?
बहन जी, आज संतरे हैं नागपुरी, दो के दाम में तीन, या फिर जामुन है आधे दाम पर.
लग तो ताजा रहे हैं. और ये दशहरी आम?
एकदम शहद हैं बहन जी, शहद. ये भी सस्ते लग जाएंगे.
अमरस के लिए ठीक रहेंगे?
एकदम बहन जी, उसी के लिए बने हैं. कितने तोल दूं?
ठहरो भी, पहले दाम तो बताओ. जामुन भी लूंगी. भैया, क्या है सस्ते दाम पर आपने बोर्ड लगा रखा है?
बहन जी, आज संतरे हैं नागपुरी, दो के दाम में तीन, या फिर जामुन है आधे दाम पर.
लग तो ताजा रहे हैं. और ये दशहरी आम?
एकदम शहद हैं बहन जी, शहद. ये भी सस्ते लग जाएंगे.
अमरस के लिए ठीक रहेंगे?
एकदम बहन जी, उसी के लिए बने हैं. कितने तोल दूं?
ठहरो भी, पहले दाम तो बताओ. जामुन भी लूंगी.
संवाद तीन.
हेलो सूरज, मैं कल के बारे में बात करना चाहती थी. तुमने कहा था तुम मुझे अपनी कार में ले चलोगे. उसमें थोड़ा बदलाव करना है. मैं तुम्हारा मंदिर के बाहर इंतजार करूंगी. मुझे मालूम है तुमने घंटाघर के बाहर आने को कहा था, लेकिन वो सड़क बंद है, घूम कर जाना होगा. तुमने 8:30 बजे मिलने के लिए कहा था. क्या उससे थोड़ा पहले 8:15 बजे मिल सकते हैं? कोई दिक्कत हो तो मुझे 8 बजे तक बता देना. बाय. हेलो सूरज, मैं कल के बारे में बात करना चाहती थी। तुमने कहा था तुम मुझे अपनी कार में ले चलोगे, उसमें थोड़ा बदलाव करना है। मैं तुम्हारा मंदिर के बाहर इंतजार करूंगी। मुझे मालूम है तुमने घंटा घर के बाहर आने को कहा था, लेकिन वो सड़क बंद है, घूम कर जाना होगा। तुमने 8:30 बजे मिलने के लिए कहा था, क्या उससे थोड़ा पहले 8:15 बजे मिल सकते हैं? कोई दिक्कत हो तो मुझे 8 बजे तक बता देना। बाय।
संवाद 4।
रोहित, आज रसायन विज्ञान की प्रयोग कक्षा कैसी लगी?
मुझे तो बहुत मजा आया। पता नहीं मैम इतना क्यों डरा रही थीं?
शायद इसलिए कि प्रयोग के उपकरण बहुत जटिल थे।
मैं समझ गया तुम्हारी बात। पहले तो मेरे हाथ से थर्मोमीटर टूटते टूटते बजा, उसके बाद कांच का जार गिरकर चकनाचूर हो गया।
परख नली भी तो कितनी नाजुक थी। मुझे तो हैरत हो रही है कि वो नहीं टूटी।
तुम ठीक कहती हो, कुछ छात्र थोड़े अनाड़ी भी हैं।
रोहित, आज रसायन विज्ञान की प्रयोग कक्षा कैसी लगी?
मुझे तो बहुत मजा आया। पता नहीं मैम इतना क्यों डरा रही थीं?
शायद इसलिए कि प्रयोग के उपकरण बहुत जटिल थे।
मैं समझ गया तुम्हारी बात। पहले तो मेरे हाथ से थर्मोमीटर टूटते टूटते बजा, उसके बाद कांच का जार गिरकर चकनाचूर हो गया।
परख नली भी तो कितनी नाजुक थी। मुझे तो हैरत हो रही है कि वो नहीं टूटी।
तुम ठीक कहती हो, कुछ छात्र थोड़े अनाड़ी भी हैं।
संवाद 5।
आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जा रहा है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। श्रम दिवस की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब दुनिया भर के श्रमिकों ने काम के लिए बेहतर परिस्थिति, उचित वेतन और कम घंटे काम करने की मांगें शुरू की थीं। श्रम दिवस भारत, क्यूबा और चीन समेत 80 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इस दिन श्रमिकों को उचित मजदूरी व अधिकार दिलाने और शोषण से बचाने के लिए जुलूस निकाले जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जा रहा है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। श्रम दिवस की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब दुनिया भर के श्रमिकों ने काम के लिए बेहतर परिस्थिति, उचित वेतन और कम घंटे काम करने की मांगें शुरू की थीं। श्रम दिवस भारत, क्यूबा और चीन समेत 80 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इस दिन श्रमिकों को उचित मजदूरी व अधिकार दिलाने और शोषण से बचाने के लिए जुलूस निकाले जाते हैं।
संवाद 6।
कैसी लगी फिल्म फातिमा?
मुझे तो अच्छी लगी जावेद। जज पर जरूर गुस्सा आया, पर शायद उसकी भूमिका का मकसद भी यही था। दूसरी तरफ बेचारा पुलिस अफसर, कितना कठिन था उसका काम। उसकी भूमिका भी कमाल की थी।
तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। उसका अभिनय लाजवाब था। शुरू में मुझे लगा कि संगीत जमा नहीं, लेकिन बाद में मेरा विचार बदल गया। मुझे केवल फिल्म की लंबाई से शिकायत है, इसे छोटा किया जा सकता था।
हाँ, मुझे भी यही लगा।
कैसी लगी फिल्म फातिमा?
मुझे तो अच्छी लगी जावेद। जज पर जरूर गुस्सा आया, पर शायद उसकी भूमिका का मकसद भी यही था। दूसरी तरफ बेचारा पुलिस अफसर, कितना कठिन था उसका काम। उसकी भूमिका भी कमाल की थी।
तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। उसका अभिनय लाजवाब था। शुरू में मुझे लगा कि संगीत जमा नहीं, लेकिन बाद में मेरा विचार बदल गया। मुझे केवल फिल्म की लंबाई से शिकायत है, इसे छोटा किया जा सकता था।
हाँ, मुझे भी यही लगा।
यह अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास दो सुनेंगे। अब आप अभ्यास दो के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो, प्रश्न सात।
महात्मा गांधी के नारी सशक्तिकरण के विचारों का परिचय कराने वाली इस वार्ता को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों ए से एच को भरिए। यह वार्ता आपको दो बार सुनाई जाएगी।
महात्मा गांधी ने महिला अधिकारों को लेकर आज के चिंतन की नींव बहुत पहले ही रख दी थी। उनका कहना था, मैं बेटे और बेटियों के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करूंगा। जहां तक स्त्रियों के अधिकार का सवाल है, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। नारी पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए जो पुरुषों पर न लगाया गया हो। नारी को अबला कहना उसकी मानहानि करना है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। आपसी सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व असंभव है। स्त्री पुरुष की सहचरी है। उसकी मानसिक शक्तियां पुरुष से जरा भी कम नहीं हैं। गांधी जी महिलाओं को सशक्तिकरण का विषय नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उनका मानना था कि महिलाएं स्वयं इतनी सबल हैं कि खुद के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनका कहना था कि अगर महिलाओं को आजाद होना है तो उन्हें निडर बनना होगा। परिवार और समाज के बंधनों को तोड़ते हुए थोपे गए अन्याय का विरोध करना होगा और यही ताकत उन्हें जुल्मों से मुक्ति दिला सकती है। समाज में एक नई पहचान बनाने की हिम्मत दे सकती है। गांधी जी देश की प्रगति में महिलाओं को अहम भूमिका निभाने के लिए सदैव प्रेरित करते रहे। उनका कहना था कि महिलाएं पुरुषों के हाथ का खिलौना नहीं हैं और ना ही उनकी प्रतिद्वंद्वी हैं। महिला और पुरुषों में आत्मा एक ही है और उनकी समस्याएं भी एक जैसी हैं। महात्मा गांधी ने महिलाओं के शिक्षित होने पर सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि यही वो आधार था जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर ले जाकर खड़ा कर सकता था। गांधी जी के विचार में महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और यदि उन्हें सशक्त बनना है तो इसकी पहल परिवार से ही करनी होगी। गलत बातों को जब तक वो सहेगी उसके साथ जुल्म होता रहेगा। उन्होंने कहा था, जिस दिन एक महिला रात में सड़कों पर निडर होकर चलने लगेगी। उस दिन हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है।
अभ्यास दो की यह वार्ता अब आप फिर से सुनेंगे।
महात्मा गांधी ने महिला अधिकारों को लेकर आज के चिंतन की नींव बहुत पहले ही रख दी थी। उनका कहना था, मैं बेटे और बेटियों के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करूंगा। जहां तक स्त्रियों के अधिकार का सवाल है, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। नारी पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए जो पुरुषों पर न लगाया गया हो। नारी को अबला कहना उसकी मानहानि करना है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। आपसी सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व असंभव है। स्त्री पुरुष की सहचरी है। उसकी मानसिक शक्तियां पुरुष से जरा भी कम नहीं हैं। गांधी जी महिलाओं को सशक्तिकरण का विषय नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उनका मानना था कि महिलाएं स्वयं इतनी सबल हैं कि खुद के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनका कहना था कि अगर महिलाओं को आजाद होना है तो उन्हें निडर बनना होगा। परिवार और समाज के बंधनों को तोड़ते हुए थोपे गए अन्याय का विरोध करना होगा और यही ताकत उन्हें जुल्मों से मुक्ति दिला सकती है। समाज में एक नई पहचान बनाने की हिम्मत दे सकती है। गांधी जी देश की प्रगति में महिलाओं को अहम भूमिका निभाने के लिए सदैव प्रेरित करते रहे। उनका कहना था कि महिलाएं पुरुषों के हाथ का खिलौना नहीं हैं और ना ही उनकी प्रतिद्वंद्वी हैं। महिला और पुरुषों में आत्मा एक ही है और उनकी समस्याएं भी एक जैसी हैं। महात्मा गांधी ने महिलाओं के शिक्षित होने पर सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि यही वो आधार था जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर ले जाकर खड़ा कर सकता था। गांधी जी के विचार में महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और यदि उन्हें सशक्त बनना है तो इसकी पहल परिवार से ही करनी होगी। गलत बातों को जब तक वो सहेगी उसके साथ जुल्म होता रहेगा। उन्होंने कहा था, जिस दिन एक महिला रात में सड़कों पर निडर होकर चलने लगेगी उस दिन हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास तीन सुनेंगे। अब आप अभ्यास तीन के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास तीन प्रश्न 8 से 15।
फिल्म निर्माता रचना शंकर के साथ पत्रकार राहुल बोस की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। ये बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
रचना शंकर जी, वसुंधरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद राहुल जी।
रचना जी, सुना है आप दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पर फिल्म बना रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
जी, माजुली पर फिल्म बनाने गई थी, लेकिन वहां एक ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ कि फिल्म अब उनकी कहानी बन गई है।
अरे वाह, कौन है ये साहब और उन्होंने ऐसा क्या किया है?
इनका नाम है जादव पायेंग। माजुली के जीव जंतुओं को ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से बचाने के लिए जादव ने अकेले दम पर माजुली की लगभग 1400 एकड़ रेतीली पट्टी को हरियाले वन में बदल दिया है। उनके जंगल का नाम मोलाई कोठानी है, जिसका मतलब है मोलाई की लकड़ी, क्योंकि जादव को गांव के लोग प्रेम से मोलाई कहकर बुलाते हैं। इसमें बांस, साल और सागौन जैसी जंगली पेड़ों के अलावा फलदार पेड़ और औषधियों के पेड़ भी हैं।
लेकिन माजुली द्वीप पर तो 30 गांव हैं, जिनमें 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। जादव पायेंग को अकेले दम पर यह काम क्यों करना पड़ा? दूसरों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया?
राहुल जी, ऐसे कामों के लिए धुन और धीरज की जरूरत होती है, जो सबके पास नहीं होते। वैसे तो हर साल माजुली का आधे से अधिक भाग ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ में डूब जाता है, लेकिन तटवर्ती गांवों में नदियों की धारा के बहाव और उससे होने वाले जमीन के कटाव के कारण और अधिक तबाही होती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र को भारत के पूर्वोत्तर का अभिशाप भी कहा जाता है। जादव का गांव भी नदी किनारे था, जहां से पढ़ने के लिए वे नदी के दूसरे छोर पर स्थित जोरहाट शहर जाया करते थे। एक दिन जब वे जोरहाट में 10वीं की परीक्षा देकर बाढ़ का पानी उतरने पर गांव लौटे, तो नदी का तट बाढ़ में मरे जीव जंतुओं के शवों से अटा पड़ा था। एकदम मरघट का सा दृश्य था, जिसे देखकर जादव को कई रात नींद नहीं आई। एक दिन गांव की चौपाल में चल रही चर्चा के दौरान किसी ने कहा कि जब पेड़ पौधे ही नहीं रहे तो जीव जंतु बाढ़ से कैसे बचें? रेतीले तटों पर ना तो कुछ पकड़ने को बचा है, ना कुछ खाने को। जादव ने उस बात को पकड़ लिया और उस दिन से गांठ बांध ली कि अब वे गांव में पेड़ पौधे लगाकर ही दम लेंगे। शुरू में लोगों ने साथ देने के बजाय उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन पर नई नई पौध लगाने की धुन सवार हो गई। देखते ही देखते कुछ सालों के भीतर उन्होंने 1400 एकड़ जमीन में पेड़ लगाकर एक हरा भरा जंगल खड़ा कर दिया।
जीव जंतुओं का क्या हुआ और क्या इस जंगल की देखभाल भी जादव ही करते हैं?
जादव का जंगल भांति भांति के जीव जंतुओं का बसेरा बन चुका है। इसमें प्रवासी और देशी पक्षियों के साथ साथ 5 से अधिक बाघ, जंगली हाथी, गैंडे, जंगली सुअर और 100 से अधिक हिरण विचरण करते हैं। ये सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियों का खजाना भी है। यूनेस्को ने पूरे माजुली द्वीप को ही उसकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता के कारण विश्व धरोहरों में शामिल कर लिया है। भारत सरकार ने जादव पायेंग को विश्व का सबसे बड़ा मानव रोपित वन लगाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है। उनके काम की वजह से माजुली पर्यटन और प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है।
रचना जी, रोचक जानकारी के लिए धन्यवाद और आपकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं।
धन्यवाद।
अभ्यास तीन की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। रचना शंकर जी, वसुंधरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद राहुल जी।
रचना जी, सुना है आप दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पर फिल्म बना रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
जी, माजुली पर फिल्म बनाने गई थी, लेकिन वहां एक ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ कि फिल्म अब उनकी कहानी बन गई है।
अरे वाह, कौन है ये साहब और उन्होंने ऐसा क्या किया है?
इनका नाम है जादव पायेंग। माजुली के जीव जंतुओं को ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से बचाने के लिए जादव ने अकेले दम पर माजुली की लगभग 1400 एकड़ रेतीली पट्टी को हरियाले वन में बदल दिया है। उनके जंगल का नाम मोलाई कोठानी है, जिसका मतलब है मोलाई की लकड़ी, क्योंकि जादव को गांव के लोग प्रेम से मोलाई कहकर बुलाते हैं। इसमें बांस, साल और सागौन जैसी जंगली पेड़ों के अलावा फलदार पेड़ और औषधियों के पेड़ भी हैं।
लेकिन माजुली द्वीप पर तो 30 गांव हैं, जिनमें 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। जादव पायेंग को अकेले दम पर यह काम क्यों करना पड़ा? दूसरों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया?
राहुल जी, ऐसे कामों के लिए धुन और धीरज की जरूरत होती है, जो सबके पास नहीं होते। वैसे तो हर साल माजुली का आधे से अधिक भाग ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ में डूब जाता है, लेकिन तटवर्ती गांवों में नदियों की धारा के बहाव और उससे होने वाले जमीन के कटाव के कारण और अधिक तबाही होती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र को भारत के पूर्वोत्तर का अभिशाप भी कहा जाता है। जादव का गांव भी नदी किनारे था, जहां से पढ़ने के लिए वे नदी के दूसरे छोर पर स्थित जोरहाट शहर जाया करते थे। एक दिन जब वे जोरहाट में 10वीं की परीक्षा देकर बाढ़ का पानी उतरने पर गांव लौटे, तो नदी का तट बाढ़ में मरे जीव जंतुओं के शवों से अटा पड़ा था। एकदम मरघट का सा दृश्य था, जिसे देखकर जादव को कई रात नींद नहीं आई। एक दिन गांव की चौपाल में चल रही चर्चा के दौरान किसी ने कहा कि जब पेड़ पौधे ही नहीं रहे तो जीव जंतु बाढ़ से कैसे बचें? रेतीले तटों पर ना तो कुछ पकड़ने को बचा है, ना कुछ खाने को। जादव ने उस बात को पकड़ लिया और उस दिन से गांठ बांध ली कि अब वे गांव में पेड़ पौधे लगाकर ही दम लेंगे। शुरू में लोगों ने साथ देने के बजाय उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन पर नई नई पौध लगाने की धुन सवार हो गई। देखते ही देखते कुछ सालों के भीतर उन्होंने 1400 एकड़ जमीन में पेड़ लगाकर एक हरा भरा जंगल खड़ा कर दिया।
जीव जंतुओं का क्या हुआ और क्या इस जंगल की देखभाल भी जादव ही करते हैं?
जादव का जंगल भांति भांति के जीव जंतुओं का बसेरा बन चुका है। इसमें प्रवासी और देशी पक्षियों के साथ साथ 5 से अधिक बाघ, जंगली हाथी, गेंडे, जंगली सुअर और 100 से अधिक हिरण विचरण करते हैं। ये सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियों का खजाना भी है। यूनेस्को ने पूरे माजुली द्वीप को ही उसकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता के कारण विश्व धरोहरों में शामिल कर लिया है। भारत सरकार ने जादव पायेंग को विश्व का सबसे बड़ा मानव रोपित वन लगाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है। उनके काम की वजह से माजुली पर्यटन और प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है।
रचना जी, रोचक जानकारी के लिए धन्यवाद और आपकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं।
धन्यवाद। अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4 प्रश्न 16 से 23।
ई शिक्षा और स्कूली शिक्षा पर दो वक्ताओं की बातचीत को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। ये बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
ई शिक्षा पाठ्यक्रम में हम घर बैठे कम समय में एक साथ कई विषयों का ज्ञान ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो शिक्षार्थी किसी कारणवश अथवा असमर्थतावश नियत समय और स्थान पर जाकर नहीं सीख सकते, उनके लिए कक्षा और प्रशिक्षक सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध हैं। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम देश ही नहीं बल्कि विदेश में दी जाने वाली उपयोगी शिक्षा को भी ग्रहण कर सकते हैं। अपनी गति से किसी भी समय अध्ययन कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। पढ़ने के अलावा छात्र अपने कार्य की समीक्षा कर सकते हैं। यह शिक्षा पद्धति सीखने की तात्कालिक सुविधा ही प्रदान नहीं करती बल्कि गतिविधियों और परीक्षाओं के परिणामों को देखने की सुविधा भी प्रदान करती है।
शिक्षा केवल तकनीकी और मशीनी प्रक्रिया नहीं है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सामग्री और सूचनाएं उपलब्ध करा देने तक सीमित हो। ये एक निरंतर चलने वाली और ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। कहा भी गया है कि विद्यार्थी अपना चौथाई ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त करता है, चौथाई अपनी बुद्धि से, चौथाई अपने सहपाठियों से और अंतिम चौथाई अनुभव से प्राप्त करता है। सीखने वाला इन सभी स्रोतों के गुण, धर्म, अनुभव और सार को ग्रहण करके नए ज्ञान, संस्कार और कौशल सीखता है। उन्हें अपने व्यक्तित्व में समाहित करके जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसलिए गुरु और सहपाठियों से दूर रहकर हासिल किए ज्ञान का परिणाम भी मशीनी अनुभव या अव्यावहारिक जड़ता के रूप में ही सामने आता है।
ऑनलाइन शिक्षा वैकल्पिक विचारों को बढ़ावा देती है। यह छात्रों, शिक्षकों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को माप सकती है। छात्रों के सर्वांगीण विकास को पुरस्कृत करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ और मानक पैमाना देती है। इससे शिक्षण की अन्य गतिविधियों, संगोष्ठी, कार्यशाला, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि के आयोजन को अत्यंत उपयोगी, उत्पादक और किफायती बनाया जा सकता है। जो जहां है वहीं से इन गतिविधियों में भाग ले सकता है, जिससे आने जाने में व्यय होने वाले श्रम, समय और धन को बचाया जा सकता है। परिवहन में जलने वाले ईंधन के प्रयोग को सीमित करते हुए प्रदूषण को कम करके पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सकता है।
कक्षा में बच्चों को संस्कार तथा जीवन मूल्य भी सिखाए जाते हैं, जो कि ऑनलाइन संभव नहीं है। ये एक पक्षीय व्यवस्था है जिसमें वार्तालाप और संवाद की सीमित गुंजाइश और संभावना है। इससे शिक्षार्थी की समझ तथा बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। इसके अलावा ई लर्निंग के लिए घर पर अनुकूल वातावरण न होना, छात्रों का ऑनलाइन खेलों तथा सोशल मीडिया में भटक जाना, एकाग्रचित न हो पाना और कक्षा का वातावरण न होना जैसी अनेक चुनौतियां हैं। सबसे गंभीर और विचारणीय कमी ये है कि अध्यापक विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर के अनुसार ज्ञान नहीं दे पाते, क्योंकि वे अपने पाठ या तो रिकॉर्ड करके भेजते हैं या चुने गए प्लेटफॉर्म पर सीधी कक्षाएं लेते हैं जो सभी के लिए एक समान होती हैं, जबकि सब विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर एक समान नहीं होता। परिणाम स्वरूप शिक्षक और विद्यार्थी के बीच मात्र यांत्रिक संबंध होने से विद्यार्थी कितना ग्रहण कर रहा है और जो वो समझ पा रहा है वो सही है या नहीं, ये जानने के लिए भी अध्यापक के पास उचित व्यवस्था नहीं रहती।
आज के सूचना क्रांति के युग में डिजिटल शिक्षा जरूरी है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसका उपयोग एक निश्चित सीमा तक और किसी की देखरेख में ही होना चाहिए, जिससे जहां इस तकनीक का छात्रों को पूरा लाभ मिले वहीं उनका मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक विकास भी बाधित न हो। कुछ पाठ्यक्रमों और अधिकांश संगोष्ठी और सम्मेलन आदि अकादमिक गतिविधियों को ऑनलाइन करके समय, पर्यावरण तथा संसाधनों को बचाया जा सकता है, पर इसके लिए नई शिक्षण पद्धतियों का विकास और उसी के अनुरूप शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों के लिए भी समान स्तर पर आवश्यक संसाधन और ढांचागत सुविधाएं सुनिश्चित करानी होंगी। ऑनलाइन शिक्षण की एक निर्धारित सीमा होनी चाहिए, अन्यथा शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षा तीनों का ही भविष्य संकट में आ सकता है। अभ्यास चार की इस बातचीत को अब आप फिर से सुनेंगे। ई शिक्षा पाठ्यक्रम में हम घर बैठे कम समय में एक साथ कई विषयों का ज्ञान ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो शिक्षार्थी किसी कारणवश अथवा असमर्थतावश नियत समय और स्थान पर जाकर नहीं सीख सकते, उनके लिए कक्षा और प्रशिक्षक सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध हैं। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम देश ही नहीं बल्कि विदेश में दी जाने वाली उपयोगी शिक्षा को भी ग्रहण कर सकते हैं। अपनी गति से किसी भी समय अध्ययन कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। पढ़ने के अलावा छात्र अपने कार्य की समीक्षा कर सकते हैं। यह शिक्षा पद्धति सीखने की तात्कालिक सुविधा ही प्रदान नहीं करती, बल्कि गतिविधियों और परीक्षाओं के परिणामों को देखने की सुविधा भी प्रदान करती है।
शिक्षा केवल तकनीकी और मशीनी प्रक्रिया नहीं है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सामग्री और सूचनाएं उपलब्ध करा देने तक सीमित हो। ये एक निरंतर चलने वाली और ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। कहा भी गया है कि विद्यार्थी अपना चौथाई ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त करता है, चौथाई अपनी बुद्धि से, चौथाई अपने सहपाठियों से और अंतिम चौथाई अनुभव से प्राप्त करता है। सीखने वाला इन सभी स्रोतों के गुण, धर्म, अनुभव और सार को ग्रहण करके नए ज्ञान, संस्कार और कौशल सीखता है। उन्हें अपने व्यक्तित्व में समाहित करके जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसलिए गुरु और सहपाठियों से दूर रहकर हासिल किए ज्ञान का परिणाम भी मशीनी अनुभव या अव्यावहारिक जड़ता के रूप में ही सामने आता है।
ऑनलाइन शिक्षा वैकल्पिक विचारों को बढ़ावा देती है। यह छात्रों, शिक्षकों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को माप सकती है। छात्रों के सर्वांगीण विकास को पुरस्कृत करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ और मानक पैमाना देती है। इससे शिक्षण की अन्य गतिविधियों, संगोष्ठी, कार्यशाला, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि के आयोजन को अत्यंत उपयोगी, उत्पादक और किफायती बनाया जा सकता है। जो जहां है वहीं से इन गतिविधियों में भाग ले सकता है, जिससे आने जाने में व्यय होने वाले श्रम, समय और धन को बचाया जा सकता है। परिवहन में जलने वाले ईंधन के प्रयोग को सीमित करते हुए प्रदूषण को कम करके पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सकता है।
कक्षा में बच्चों को संस्कार तथा जीवन मूल्य भी सिखाए जाते हैं, जो कि ऑनलाइन संभव नहीं है। ये एक पक्षीय व्यवस्था है जिसमें वार्तालाप और संवाद की सीमित गुंजाइश और संभावना है। इससे शिक्षार्थी की समझ तथा बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। इसके अलावा ई लर्निंग के लिए घर पर अनुकूल वातावरण न होना, छात्रों का ऑनलाइन खेलों तथा सोशल मीडिया में भटक जाना, एकाग्रचित न हो पाना और कक्षा का वातावरण न होना जैसी अनेक चुनौतियां हैं। सबसे गंभीर और विचारणीय कमी ये है कि अध्यापक विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर के अनुसार ज्ञान नहीं दे पाते, क्योंकि वे अपने पाठ या तो रिकॉर्ड करके भेजते हैं या चुने गए प्लेटफॉर्म पर सीधी कक्षाएं लेते हैं जो सभी के लिए एक समान होती हैं, जबकि सब विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर एक समान नहीं होता। परिणाम स्वरूप शिक्षक और विद्यार्थी के बीच मात्र यांत्रिक संबंध होने से विद्यार्थी कितना ग्रहण कर रहा है और जो वो समझ पा रहा है वो सही है या नहीं, ये जानने के लिए भी अध्यापक के पास उचित व्यवस्था नहीं रहती।
आज के सूचना क्रांति के युग में डिजिटल शिक्षा जरूरी है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसका उपयोग एक निश्चित सीमा तक और किसी की देखरेख में ही होना चाहिए, जिससे जहां इस तकनीक का छात्रों को पूरा लाभ मिले वहीं उनका मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक विकास भी बाधित न हो। कुछ पाठ्यक्रमों और अधिकांश संगोष्ठी और सम्मेलन आदि अकादमिक गतिविधियों को ऑनलाइन करके समय, पर्यावरण तथा संसाधनों को बचाया जा सकता है, पर इसके लिए नई शिक्षण पद्धतियों का विकास और उसी के अनुरूप शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों के लिए भी समान स्तर पर आवश्यक संसाधन और ढांचागत सुविधाएं सुनिश्चित करानी होंगी। ऑनलाइन शिक्षण की एक निर्धारित सीमा होनी चाहिए, अन्यथा शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षा तीनों का ही भविष्य संकट में आ सकता है।
अभ्यास 4 और ये परीक्षा समाप्त हुई।
This is the end of the examination.